सीताराम जय सीताराम, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब लोग पुकारो, एकाग्र होकर पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये श्री रामचंद्र का वन है तपोवन, यहाँ पर आप पुकारिए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो बोलो बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की, 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ताई गो प्रेमानंदे श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री शेषवतार लक्ष्मण जी महाराज की तपोवन भूमि की चिदंधकारण्य धाम की ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे।
सोतपवन में आप सबका स्वागत है। ये बहुत ही सुंदर स्थान है जो इसका रामायण में वर्णन आता है। ये बहुत ही सघन वन था और इस वन में हर प्रकार के वृक्ष भव्य, जैसे आप बैठे हैं आप देख सकते हैं, ये तो उसके अवशेष कलयुग के बचे हुए हैं। उस समय ये वृक्ष कैसे होगा और कितना सघन होगा। कभी कभी मील मील तक बरगद के पेड़ की छाया पहुंचती थी। तो ऐसे सघन वृक्षावली, हर प्रकार के फल, बेर, जड़ी बूटियां, फिर पहाड़ के गुफाएं, बैठने की जगह, गोदावरी का प्रवाह। आप देख रहे हैं आपके पीछे गोदावरी बह रही है, इस दिशा से इस दिशा में जा रही है। ऐसे बहुत पवित्र वातावरण में राम और लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर यहां पर आए। शास्त्र में लिखा गया है कि कई जगह ऐसी है जो भजन और जप के लिए, तपस्या के लिए अनुकूल होती है। आप लिख सकते हैं नोट्स अगर आपको इंटरेस्ट है तो। जो पर्वत का शिखर होता है, पर्वत, वो जप के लिए बहुत अनुकूल माना गया है। इसलिए साधु लोग सब पर्वत पर जाते हैं, गुफा में रहते हैं, वहां पर तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। फिर जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप के लिए दूसरी अनुकूल जगह है वन, जिस वन में सघन वृक्षावली होती है। ऐसे वन हुआ करते थे पहले कि सूरज की किरण भी जमीन पर स्पर्श नहीं करती थी, इतने गहरे वन हुआ करते थे। और उसके पश्चात नदी किनारा, समुद्र किनारा, तालाब किनारा, यानी कि कोई जलाशय जहां पर जल इकट्ठा होता है, बहता रहता है, उसका किनारे में जप के लिए अनुकूल जगह होती है। और उपवन जो बगीचा होता है, शहर में होते हैं ना बहुत बगीचे, बगीचे भी जप के लिए अनुकूल माना गया है। फिर भगवान विष्णु, भगवान राम, परम भगवान का जो मंदिर है वो भी जप के लिए अनुकूल माना गया है, क्योंकि भगवान का मंदिर ये वैकुंठ से अभिन्न माना गया है। जहां पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापना करते हैं और उनकी पूजा होती है बड़े प्रेम भाव से, वो जगह वैकुंठ से अभिन्न है, इसलिए वो भी जप के लिए बहुत अनुकूल मानी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण जगह वो है, चाहे वो गटर के पास हो, नाले के पास हो, गंदी जगह में हो, लेकिन जहां पर भक्त लोग इकट्ठा होते हैं और भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, वो जगह भी भजन के लिए बहुत अनुकूल मानी गई। तो ये सब जगह भजन के लिए अनुकूल क्यों है? क्योंकि ये सब जगह सत्व गुण में है। पर्वत का शिखर, पर्वत के अंदर की गुफाएं, वन और बगीचा, नदी किनारा, जलाशय, समुद्र किनारा, ये सब जगह जो है सत्व गुण में मानी गई है, इसलिए वो भजन के लिए अनुकूल होती है। शहर ये जगह जो है ये जप के लिए प्रतिकूल मानी गई है, क्योंकि शहर कौन से गुण में होता है? पुराने जमाने में शहर रजोगुण में हुआ करता था, आजकल तमोगुण में है, क्योंकि जहां पर व्यभिचार, मांसाहार, हत्या, जीव की हत्या होती है भोग के लिए, नशा, जुआ तो होता है, ये जगह तमोगुण की मानी गई है। और जहां पर धन कमाने का और दुनिया का व्यवहार होता है उसे रजोगुण कहा जाता है। इसलिए हम सबको भजन के लिए हमेशा अनुकूल जगह ढूंढना चाहिए। वैसे तो दुनिया में भगवान के नाम के जप के लिए कोई जगह प्रतिकूल नहीं है प्रिंसिपली स्पीकिंग, लेकिन फिर भी जब तक हम इन गुणों में बद्ध हैं स्वयं, तब तक हमें हमारे जप के लिए, हमारे एकाग्रता के लिए अनुकूल जगह ढूंढना बहुत आवश्यक है। जब हम इस स्थिति से परे जाते हैं और अपने आप को दिव्य स्थिति में प्राप्त करते हैं, बहुत प्रगति करते हैं, उस समय में जहां पर भी हम जाते हैं वहां पर तो वो गुण उत्पन्न होता है। लेकिन अभी की अवस्था में हम पतित अवस्था में हैं, बद्ध अवस्था में, इसलिए हमें जरूरी हमारे भजन के लिए विचार पूर्वक जगह चुनना बहुत आवश्यक है। हमारे घर में भी अगर हमको जप करना है तो बेडरूम में नहीं करना चाहिए, तो बेडरूम में कौन सा गुण होता है? तमोगुण, निद्रा जो है वो तमोगुण में मानी गई है, इसलिए। और किचन में नहीं करना चाहिए, तो वह भोजन की इच्छा होती है, हमेशा भोजन की याद आती है, बिस्तर देखते सोने की याद आती है, किचन देखते खाने की याद आती है, इसलिए भगवान का मंदिर जो है ऐसी जगह करना चाहिए जहां पर हम सोते भी नहीं है और खाते भी नहीं है, और उस जगह छोटी सी हो क्यों ना हो लेकिन वहां बैठकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। एक ही जगह बैठना चाहिए, रोज जगह बदली नहीं करनी चाहिए, कभी सोफा पर, कभी बिस्तर पर, कभी कुर्सी पर, कभी जमीन पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के सामने बैठकर बड़े प्रेम से जप करना चाहिए। तो ये दंडकारण्य जो है, ये सब दंडकारण्य का भाग है, हम अभी दंडकारण्य में आए हैं। दंडक वन ये मध्य प्रदेश से आरंभ होता है, यहाँ पर चित्रकूट है, चित्रकूट से ये दंडकारण्य आरंभ होता है और ये नीचे, इससे नीचे भी जाता है, साउथ इंडिया तक पहुंचता है जहां पर गोदावरी नदी है। बड़ा विस्तार है इसमें, कई तीन राज्यों का समावेश है इसमें, मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है और दक्षिण भारत भी, आंध्र प्रदेश भी आता है। तो ये बहुत विशाल वन था, बहुत इतना सघन वन था कि इसमें वर्णन आता है जब राम जी चल रहे थे तो लक्ष्मण जी आगे तलवार लेकर सब काट रहे हैं, मतलब रास्ता ही नहीं कोई, इतना सघन वन था, तो उनको रास्ता बनाते बनाते वो आगे चलते, इतने भयंकर जंगल में, गहराई में उन्होंने वनवास किया है। तो कथा आरंभ होती है दंडकारण्य की, कि भरत जी, आप जानते हैं कि संक्षेप में राम जी का जन्म का इतिहास हम कालाराम मंदिर में बताएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि भरत जी राम जी को अभिषेक करने के लिए मनाने के लिए दंडकारण्य में आए, चित्रकूट में आए, और वहां पर उन्होंने बहुत उनको मनाया, बहुत विनती की, बहुत शास्त्रार्थ विचार किया, तर्क किया, उनको मनाने का कोशिश किया, लेकिन श्री रामचंद्र जी अपने पिताजी के वचन पर अटल थे। और ये पूरे संवाद से हम देख सकते हैं कि कैसे दोनों भाइयों में इतना तीव्र प्रेम था। श्री राम जी कह रहे थे कि अभी तुम ही राज्य करने के योग्य हो, लेकिन श्री राम पर उनकी इतनी भक्ति थी भरत की, उन्होंने कहा ठीक है आपकी आज्ञा है तो मैं राज्य करूंगा, लेकिन आपकी पादुका ले जाऊंगा और उन्हीं को मैं सिंहासन पर बिठाऊंगा और वो उनसे आदेश लूंगा और मैं स्वयं जैसे आप रह रहे हैं वैसे रहूंगा। आपने वलकल पहने हैं, वलकल मतलब ये जो खाल होती ना पेड़ की, ट्री बार्क कहते हैं उसे, उसको पहनते थे साधु लोग। तो श्री रामचंद्र जी राजपुत्र होने पर भी उन्होंने वलकल पहना था, सीता जी को भी वही वस्त्र पहना था उन्होंने, सन्यासियों का वस्त्र। तो ये भरत जी ने भी तय किया कि हम भी वही पहनेंगे जो आप पहनेंगे, हम भी वही खाएंगे जो आप खाएंगे। क्योंकि वन में क्या खाते हैं, वनवास का नियम होता है कि केवल रूट्स एंड फ्रूट्स, कंदमूल कहते हैं उसको, वही उनका आहार था, कोई पकाने का गुंजाइश नहीं, कोई रसोई नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, नो फायर। जो फल मिलेंगे, जो कंदमूल मिलेगा वही खाएंगे। तो राजा होने पर भी, मतलब राजा होने को नियुक्त करने पर भी भरत जी ने यह तय किया कि हम यहां तक कि शहर में भी नहीं रहेंगे, अयोध्या जी में नहीं रहेंगे, अयोध्या जी के बाहर नंदीग्राम है जो आजकल बहुत फेमस हो गया है दंगे की वजह से, वो नंदीग्राम जो है बहुत पवित्र स्थान है, वहां पर भरत जी ने अपनी कुटी बनाई। जिस प्रकार से राम ने कुटी बनाई दंतकारण्य में, उसी प्रकार से कुटी उन्होंने वहां बनवाई और एक सन्यासी के रूप में अपनी पत्नी को अयोध्या जी में रखते हुए वहां रहे और हर रोज दरबासन पर बैठते थे, कटी वस्त्र पहनकर कंदमूल खाते थे, तपस्या करते थे और रोज सुबह उठकर श्री राम जी की आज्ञा लेते थे चरण कमलों से, पादुकाओं से, और फिर वहां से राज्य का कारोबार करते थे। और पूरे वर्ष जितना वनवास उन्होंने किया राम जी ने, उतने सारे वर्ष भरत जी ने वहां पर सन्यास्त होते हुए बिताए। एक बहुत ही अनोखा और श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, चरित्र है भरत जी का, बहुत ही प्रेरणादायक है कि कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों को झेला केवल अपने भाई के लिए। उन पर गलतफहमी का भी आरोप लगाया गया, जब वो आ रहे थे सेना को लेकर तो लक्ष्मण जी ने पेड़ पर चढ़ के देखा कि भरत जी सेना लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वैसे उनकी माता ने षड्यंत्र रचा था, मंथरा ने उनको भड़काया था, लगा भी वो उसके बाद में भरत जी चाहते हैं कि हमको हमारा सब जंगल में हम बलहीन हो गए हैं, राज्यहीन हो गए हैं, तो ये उनका खात्मा कर दे, ऐसे लक्ष्मण जी का मन में विचार आता है और तुरंत धनुष लेके खड़े हो जाते हैं कि भरत जी को खत्म कर दूंगा, ये ढाढ़स करने का साहस मेरे होते हुए। तो राम जी कहते हैं कोई बात नहीं, आप उनको आने तो दो, भाई है हमारे, देखेंगे क्या विचार है उनका। राम जी तो परम भगवान है, जानते हैं उनके हृदय में क्या बात है, वो तो बड़े प्रेम से राज्याभिषेक की सामग्री लेकर जंगल में गए थे कि वही उनका राज्याभिषेक करेंगे। भरत जी आते ही राम जी के चरणों में गिर जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि आप चलिए, आपका हक है, ये मैं उसका दोषी हूं क्योंकि मैं कह कह क्या पुत्र बना, मैंने जन्म लिया उसके कोख से, इसलिए ये सब षड्यंत्र मेरे लिए रचा गया है, मैं इसका जड़ हूं, मेरा वध कर दीजिए, मुझे नष्ट कर दीजिए और आप राज्य पर बैठाइए, बैठ जाइए। लेकिन फिर भी पिताजी को देव वचन को पालने के लिए दशरथ जी परम भगवान रामचंद्र जी नहीं मानते हैं। फिर भरत बड़े नाराज होकर राज्याभिषेक की सारी सामग्री जो है कुएं में डाल देते हैं, उसका नाम है भरतकूप नाम का बड़ा कुआं है, वहां पर डाल देते हैं और बड़े निराश होकर पादुका लेकर वहां से नंदीग्राम चल देते हैं। तो भरत जी के मिलाप के बाद में श्री रामचंद्र जी साधुओं को मिलते हैं। ऐसे कहा गया है कि हनुमान जी ने कहा है कि पूरे राम जी के जीवन काल में सबसे आनंदमय काल था वनवास का। देखिए आप, क्योंकि अधिकतर सीता जी के साथ जो उनका संग हुआ है वो वनवास में ही हुआ है। वनवास के अंत में तो उनका विरह हो गया एक साल के बाद में, फिर उसके बाद फिर विरह हो गया कई साल तक, उसके पहले विवाह नहीं हुआ था। तो लक्ष्मण जी और हनुमान जी ने कहा है कि आपका सबका आनंदमय काल जो था वो वन में था, क्योंकि वो साध्वी स्त्री थी सीता देवी, लक्ष्मी देवी का अवतार है वो, तो वो हमेशा साधुओं के संग के लिए ललायत रहती थी। तो जैसे ही वन में जाने का तय हुआ तो दुख तो हुआ जरूर, लेकिन ये आनंद भी हुआ कि अभी हमको निरंतर साधुओं का संग मिलेगा, क्योंकि वो हमेशा जंगल में निवास करते हैं, भजन करते रहते, तपस्या करते रहते हैं। ऐसे दिव्य दिव्य ऋषियों का संग जो हमेशा नहीं मिलता है राज्य में, ऐश्वर्य में संपन्न जगह में नहीं मिलता है, वो जंगल में हमेशा मिलता रहेगा। तो हमेशा वो साधुओं का संग करते थे, जो तप करते थे, यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे विश्व कल्याण के लिए। साधुओं के संग में बार बार ये बात आती है कि अभी दंडक वन में राक्षसों का बहुत संचार हो गया है और सब वन जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। जैसे भरत निकल जाते हैं तो ऋषिगण आते हैं, उनको मिलते हैं कि हम ये वन छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि यहां पर खर, दूषण और त्रिशिर नाम के तीन भयंकर राक्षस यहां पर निवास कर रहे हैं। हजारों राक्षस यहां पर निवास करते हैं, उनका काम एक ही है, केवल साधुओं को मारना और उनको खाना, उनके यज्ञ में, यज्ञ स्थली में सब जगह पर विष्ठा मल मूत्र डालना और बाधा डालना, आकाश से गंदगी फेंकना उसके अंदर और भ्रष्ट करना यज्ञ को, और भ्रष्ट करने के बाद साधुओं को खा जाना। इस प्रकार से इतने सुंदर शांत वातावरण में, भजन के अनुकूल वातावरण में बहुत आतंक मच गया था। आजकल जो हम आतंक देखते हैं वो उस आतंक के सामने बहुत तुच्छ आतंक है, क्योंकि इस प्रकार के वो भयंकर राक्षस थे। श्री रामचंद्र जी जितने हाइट थी उससे 10 गुना उनकी हाइट हुआ करती थी। आपको जानना जरूरी यह है कि हमारी जो हाइट है वो कलयुग में, एक छोटी सी कहानी है रामचंद्र जी के, भगवान कृष्ण की कथा में, एक मुचुकुंद नाम के राक्षस थे जिनको जिनका युद्ध हुआ और वो उन्होंने भगवान से वर मांगा कि हम सोना चाहते हैं, तो वो सो गए और वो वर मांगते हैं क्योंकि तो मुचुकुंद जो है भगवान को युद्ध में सहायता करते हैं, बहुत थक जाते हैं। तो भगवान कहते क्या वर चाहिए, बोला हमें सोना है अभी बस, और सोना भी ऐसे है कि उठाने को आएगा तो जल के बस होना चाहिए, इतनी नींद, मतलब इतना निद्रा का वेग, तो वो सो जाते हैं। और फिर कई युग बीतते हैं और द्वापर युग आता है, भगवान को याद है कि मेरा भक्त सोया हुआ है तो जगाना भी चाहिए। तो भगवान जो है वो उसका राक्षस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, वो राक्षस का नाम है मूर शायद, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग क्लियरली। तो उससे युद्ध करते हैं भगवान, और युद्ध करते करते भगवान अपने आप भागने लगते हैं और वो योद्धा को अपने पास साथ में भगा के ले जाते हैं। और कहाँ ले जाते हैं, उस गुफा में, सबसे पहले खुद गुफा में प्रवेश करते हैं। तो कुछ देर बाद भागते भागते राक्षस भी आता है, वो देखता है अरे ये सोया है, वो है मतलब ये कृष्ण जो है इतने छलिया है कि रूप बदल करके तुरंत सो भी गए हैं। और सोए कैसे हैं, दाढ़ी जो ऐसे 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 बह रही है कई मील तक, मतलब कई अंतर तक, और नाखून जो ऐसे बड़े बड़े ऐसे सब जगह पे हाथ ऐसा रखा है तो उसके आगे नाखून फैले हुए, मतलब कई युग हो गए ना, तो दाढ़ी बढ़ रही है, बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं और ये विचित्र अवस्था में बहुत गहरी नींद सो रहे हैं। मतलब तो ये कृष्ण जो है बहुत छलिया है, हाँ अभी तुरंत भेष बदल लिया मेरा, मुझे भ्रष्ट कर, मतलब कंफ्यूज करने के लिए। तो लात मार के उसको जगाते जैसे जैसे जगता है मुझे कुछ और देखता है उसके, और तो भस्म होके मर जाता है। तो कृष्ण भगवान कभी कभी ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप से उनको राक्षस को, इनको तो वर दिया है, देखते ही वो बस हो जाएगा। जैसे राक्षस मर जाता है तो गुफा से कृष्ण भगवान बाहर आते हैं और उनके सामने खड़े हो जाते हैं, दर्शन देते हैं उनको, और दर्शन देते ही मुचुकुंद जो है उनका मुक्ति हो जाती है, उनको उनकी गति, परम गति प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन एक यहाँ पर एक मैंने ये कथा क्यों बताई, जैसे ही मुचुकुंद बाहर आते हैं और देखते हैं अरे इतने छोटे छोटे लोग क्यों हो गए, वाई पीपल आर सो स्मॉल। तो भगवान उसको बताते हैं कि तुम्हें जब यहां पर आप सोने आए थे तो सत्ययुग था, अभी 2 युग बीत गए हैं और हर युग में लोगों की जो हाइट है वो कम कम होती जाती है, सद्गुणों के साथ, आयु के साथ कद भी कम हो जाती है। तो अभी 3 युग बीत गए, 3 युग का अंत चल रहा है, अभी द्वापर का अंत समय चल रहा है, तो लोग बहुत छोटे छोटे हैं। इसका मतलब श्री कृष्ण भगवान ने जब अवतार लिया तो उनकी हाइट राम अवतार से भी छोटी थी, हाँ, और राम अवतार से भी जो सत्ययुग के अवतार है हयग्रीव और, हाँ, नरसिंह भगवान और वरा भगवान ये सबका जो है वो अवकाश में हुआ करते, मतलब उनका वो पृथ्वी पर नहीं रहते थे, उनका युद्ध सब अवकाश में हुआ है, स्पेस में हुआ है। राक्षस भी ऐसे जो पृथ्वी को लात मारकर फुटबॉल की तरह पानी में फेंक सकता है, तो उसकी हाइट कितनी होगी आप सोच सकते हैं, उनका आकार क्या हो सकता है। तो ऐसे श्री रामचंद्र जी यहां पर आने लगे तो राक्षस ऐसे भयंकर थे, खर दूषण त्रिशिर और उनके 14,000 सैनिक जो है इस जनसान में उन्होंने रखे थे। तो ये जो भूमि है इसका अलग अलग युग में अलग अलग नाम दिया गया है, इसको कहते हैं पद्मपुर सत्ययुग में, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहां पर पद्मासन में बैठकर तपस्या किया था सृष्टि के निर्माण के लिए। हमने कल बताया ना आपको, वहां पर उन्होंने तपस्या किया था, ये पूरे क्षेत्र को उसका नाम पड़ा है पद्मपुर। उसके बाद राजा जनक ने यहां पर राक्षसों को नष्ट करने के लिए और पवित्रता उत्पन्न करने के लिए कई यज्ञ अनुष्ठान किए इस वन में, इसका नाम है जनस्थान। उसके बाद में तीन राक्षस यानी कि खर दूषण और त्रिशिर यहां पर रहे, इसने का नाम था त्रिकंटक। और लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार से शूर्पणखा की नासिका काटकर यहां पर फेंक दी, जमुना गंगा गोदावरी जी के उस तरफ, नाम गिरा नासिक। और एक नाम है पांचवा पंचवटी, उसकी कथा पंचवटी में बताएंगे आपको। हाँ, पंचवटी नाम क्यों पड़ा इसका। तो इस प्रकार से राम लक्ष्मण भी सोचते हैं कि सब साधुजन जा रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए। और रामायण में बहुत विशेष बात बताई है कि साधुगण भी कभी भी वनवास करते हुए भी किसी विशिष्ट जगह पर आसक्त नहीं होते हैं, कोई ये पेड़ अच्छा है, इसमें अच्छे फल लगे हुए हैं, यहाँ पर अच्छा जल है, अच्छी हवा है, अच्छा सब मिलता है यहाँ पर, तो यही रह जाएंगे, ऐसा नहीं होता उनका। कुछ कुछ समय बाद वो बदली करते रहते हैं, क्योंकि उनको ये भी लगता है कि हम तो अपने बिस्तर से घर में और फर्नीचर से और टीवी से और बाथरूम से अटैच होते हैं, तो साधु लोग तो पेड़ से भी अटैच नहीं होना चाहते, जिस पेड़ में नीचे रह रहे हैं, इतनी विरक्ति होती है, तो वो भी चल देते हैं। राक्षस का कारण तो है, लेकिन मन में ये भी है कि बहुत दिन रह चुके यहाँ पर, अभी जगह बदली होनी चाहिए, तो फिर वो आगे बढ़ते हैं। फिर रामचंद्र भी चलते रहते हैं और हर जगह पर जहां जहां रुकते हैं वहां साधुगण मिलते हैं, वही बताते हैं कि यहां पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया है। तो आगे चलते हैं तो एक जंदगाड़ में प्रवेश करते ही साधु आके मिलते हैं, चर्चा करने लगते हैं। उतने में अत्रि ऋषि जो है उनके आश्रम में सीता देवी चली जाती है और उनकी पत्नी जो है अनसुईया उनको मिलती है। अनसुईया जो है ये तीन जो सबसे बड़ी सतियां हो गई है उसमें से एक है परम सती, जिसके कोख से दत्तात्रेय का जन्म हुआ है। बस संक्षेप में कथा उसकी ऐसी है कि वो लक्ष्मी देवी ने कहा कि लक्ष्मी देवी को विष्णु भगवान ने कहा कि सबसे बड़ी सती जो है वह अनसुईया है। तो लक्ष्मी देवी ने सोचा कि उसकी परीक्षा ली जाए, तो फिर लक्ष्मी देवी की संतुष्टि के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ऋषि बनकर वहां गए और उन्होंने कहा कि हमें आपसे भिक्षा चाहिए, ले लीजिए भिक्षा लेकर आती है। बोला ऐसे नहीं, आप निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा दीजिए और भिक्षा खिलाइए। तो अनसुईया जी हंस पड़ती है, बोले ठीक है कोई बात नहीं। अंदर जाती है, कमंडलू का जो पवित्र जल लेके आती है और तीनों पर फेंकती है और तीन लोग जो है रेंगते हुए बालक बन जाते हैं स्वयं निर्वस्त्र, सबको गोद में लेती है, अपने आप भी निर्वस्त्र हो जाती है, उनको गोद में लेती है और भोजन खिलाती है। इसलिए उसका पातिव्रत भंग नहीं होता है, सतीत्व भंग नहीं होता है, क्योंकि बालक जो होता है वो माता को क्या देखता है, थोड़ी देखता है कि ये शरीर के भोग का साधन है, वो तो देखता है कि ये मेरा खाद्य है, कोई वासना नहीं उसके मन में। तो पहले उनको फ्री करती है इस भावना से और फिर अपने आप को निर्वस्त्र करके गोद में खिलाती, तो वो बालक इनसे इतने आसक्त हो जाते हैं माता के रूप में, वहीं रह जाते हैं, वहीं पर थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। तो बहुत देर के बाद लक्ष्मी जी सरस्वती जी और पार्वती जी आती हैं, अरे हमारे पति कहाँ गायब हो गए। वहीं पहुंचते हैं अनसुईया के आश्रम में और देखते हैं कि अरे कहाँ गए हमारे, यहाँ पर भिक्षा मांगने आए थे। बोले वो देखो खेल रहे हैं। तीन बालक खेल रहे हैं और तुरंत फिर वो अपने मूल रूप में आ जाते हैं और सब कथा सुनते हैं। तो पार्वती जी लक्ष्मी जी और सरस्वती जी तीनों ये मान जाते हैं कि सतीत्व इनका जो है वो श्रेष्ठ है। तो फिर वो जाने को तैयार नहीं होते, तीनों देव, तो फिर अनुसुईया जी भी उनसे आ सकते हैं, तो उनसे वर मांगते हैं कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। तो दत्तात्रेय जो है उनके विष्णु के अवतार के रूप में वो जन्म लेते हैं, और दुर्वासा मुनि शिव जी के अंश के रूप में जन्म लेते हैं, और कौन है तीसरे, ब्रह्मा जी, यस नहीं, पहले पुत्र कौन है उनके, दुर्वासा जी, दत्तात्रेय जी, और एक मुझे याद आएगा बाद बताऊंगा आपको। तो तीन रूप में अवतार लेकर उनके गोद में जन्म लेते हैं। तो अनसुईया जी सती, बड़ी सती है, इसलिए सीता देवी बहुत हृदय से प्रसन्न हो जाती है उनसे मिलने पर, और अनसुईया जी अपनी तरफ से उनको दिव्य वस्त्र, फूलों की माला, दिव्य अलंकार और श्रृंगार के साधन दे देती हैं। और जंगल में होने के नाते वनवास में कोई अलंकार नहीं पहनना चाहिए, कोई भरजरी वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, फिर भी एक सती के द्वारा प्रसाद प्राप्त हुआ है, इसके कारण वो भगवान रामचंद्र के पास जाती है, क्योंकि सीता देवी बड़ी सती है, और उनकी परमिशन लेती है, उनकी परमिशन से फिर वो अलंकार वस्त्र और गहना और श्रृंगार के साधन सब पहनती है। और ऐसा कहा गया है कि चमकते हुए सूर्य की तरह वो दिखाई पड़ती है उसको पहनने के बाद में। फिर वहां से रामचंद्र लक्ष्मण जी और सीता जी को लेकर निकलते हैं और बहुत घने जंगल में जाते हैं। वहां पर कैसे हैं, लक्ष्मण जी आगे तलवार लेकर सब घास काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, और बीच में सीता देवी है और पीछे धनुष लेकर रक्षा के रूप में राम जी चल रहे हैं। अचानक क्या होता है कि उनके सामने उनके चार गुना बड़े एक भयंकर राक्षस खड़े हो जाते हैं अचानक एकदम रास्ता रोक के। और क्या उनकी अवस्था है, उस राक्षस के हाथ में एक भाला है, और भाले पर क्या है सुनना है आपको, भाले पर बहुत चीजें हैं, उस भाले पर चार शेर है, सॉरी चार सिंह है मरे हुए, तीन शेर है, थ्री टाइगर्स, और दो चार भेड़िया है, और दस टिपके टिपके गावल उसको बिंदु बिंदु वाले हिरण लटके हुए हैं। मतलब वो राक्षस शिकार करके अपने कले बाल भोग करने के लिए शिकार करके आ रहा है, उसके कंधे पर ये सब है, उसके कान बहुत तीक्ष्ण है, बहुत भयंकर दांत है उसके, और साथ साथ में इसके उसके आंखें जो है कोयले की तरह लाल है, और उसके जानवरों के अलावा शरीर पर एक दो चार शेरों का भी चमड़ी लटका हुआ है, उसमें से अभी भी खून टपक रहा है, मतलब खाए हुए मांस खाया हुए शेर के जो चमड़ी है, व्याघ्रचिन बोलते ना उसको, टाइगर स्किन डाला हुआ है कंधे पे से, उसमें से भी खून टपक रहा है। ऐसे भयंकर अवस्था में राक्षस खड़ा होता है और रक्षा रोक लेता है, वो कहता है कि बड़े दिनों बाद आप आए हो, आप मूर्ख व्यक्ति हो कि इस जंगल में आप मेरे मुंह में आए हो, अभी आपकी सुंदर स्त्री को मेरे पास रखिए और दोनों मेरे से मरने के लिए तैयार हो जाइए, आप मैं दोनों को आपको मार के खा जाऊंगा, और इसके साथ में राक्षस का वेश बदलकर पुरुष बन जाऊंगा, मनुष्य बन जाऊंगा, और विवाह करके इसके साथ में आनंद लूंगा। और तुरंत उनके सामने वो सीता जी को उठा लेता है और अपने हाथ में पकड़ लेता है। सीता जी बड़े असहाय होकर पुकारती है और बार बार बताता है अगर आपको बचना है तो यहां से भाग चलो। राम और लक्ष्मण, उसका नाम है राक्षस का विराट, विराट राक्षस है। तो तुरंत लक्ष्मण और राम भगवान उनसे युद्ध करते हैं और बहुत भयंकर राक्षस होता है, उन पर अनेक हजारों बाण फेंकते हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, टस से मस नहीं होता है, उसको मुक्के मारते हैं, उसको लात मारते हैं, फिर भी वो कुछ भी नहीं होता है, और बार बार उन पर अटैक करता है पेट उठाकर, शस्त्र उठाकर। तो उसके बाद में वो झुक जाता है और दोनों को भी उठाता है, सीता को वहां रखता है और दोनों को उठाता है। तो सीता देवी जोर से चिल्लाती है, अरे आप इनको लेके जा रहे हो, मुझे भी लेके चलो, मैं यहां पर अकेले जंगल मंगल में कैसे, हिंस शापदों में कैसे रहूंगी। तो सीता जी चीखती है और ये उनको लेकर, जैसे उनकी इतनी ऊंचाई है, जमीन से लेकर ऊपर उठा लेता है। तो उसके हाथ पर बैठे बैठे राम भगवान उसका दाहिना हाथ काट देते हैं और लक्ष्मण उसका बाया हाथ काट देते हैं, और वो दोनों जमीन पर आ जाते हैं, राम और लक्ष्मण हाथ के साथ में। फिर भी राक्षस नहीं मरता है, उनको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे राक्षस मर नहीं रहा है, मैं इतने बाण चलाए। तो कहते हैं मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि मैं किसी भी शस्त्र से नहीं मर सकता हूं। तो सोचते भी क्या किया जाए, तो उसको वो बल से एकदम दे ओवरवेलमिंग विद पावर ऑफ बॉडी। फिर राम जी कहते हैं लक्ष्मण को कि एक बड़ा गड्ढा खोदो और इसको हम गड्ढे में डाल देंगे, ऊपर से मट्टी डालकर बंद कर देंगे, फिर अपने आप अंदर वो मर जाएगा। तो जैसे ही ये प्रसंग आता है कि वो एकदम विराट राक्षस जो है एकदम कमजोर पड़ जाता है, शरीर से दुर्बल हो जाता है, तो उस समय वो कहता है कि अब मैं समझ चुका हूं कि आप अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र हो, अरे आपके छोटे भाई लक्ष्मण है और ये आपकी दिव्य पत्नी सीता देवी है। बोले तो आपको कैसे पता है? वो कहता है कि मैं गंधर्व था, कुबेर के देश में मेरा सेवा था, कुबेर जो है देवता है ना, भगवान के ट्रेजरर है वो, तो वहां पर वो कुबेर की सेवा में थे, तुम्बुरु, उनका नाम था तुम्बुरु। कहते एक बार मैं, जैसे मैंने कल आपको बताया ना स्वर्ग में कैसा होता है, हमेशा आनंद, यहाँ पर अपसारे, वहां पर नंदन वन, वहां पर फूल, वहां पर फल, केवल भोग ही भोग है। ये कुबेर के सेवा में थे लेकिन उन्होंने क्या किया, अप्सराओं के आनंद में मग्न थे वो, और कुबेर जी आते हैं उनकी सेवा में चूक जाते हैं, ये मेक्स अ मिस्टेक इन सेवा। तो कुबेर जी को गुस्सा आता है, कहते कि तुम बड़े भयंकर राक्षस बनोगे। तब उनको पश्चाताप होता है, जल जाते हैं अपने भोगवाद से। फिर वो उच्छाप मांगते हैं, तब कुबेर जी उनको उच्छाप देते हैं कि जब रामचंद्र के द्वारा तुम प्रभावित हो जाओगे और उनके बल के सामने दुर्बल हो जाओगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो जैसे ही पहली बार अपने जीवन में वो दुर्बलता का अनुभव करते, समझ जाते हैं कि ये उसी उच्छाप का परिणाम है। तो फिर वो कहते हैं कि आप मुझे अभी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आप मुझे इस गड्ढे में डाल दीजिए, फिर मेरा देहांत हो जाएगा, फिर मैं अपने रूप को प्राप्त करूंगा। जैसे ही वो गड्ढे में डालते हैं तुरंत वहां से गंधर्व रूप उसको प्राप्त होता है। तो सारे देवता आकाश में विमान में रेडी रहते हैं और भगवान को प्रणाम करते हुए उस सबको विमान में स्वीकार करते हैं और कुबेर जी के लोक में लेके जाते हैं। जाते जाते वो भगवान को कहते हैं कि आपके लिए शरभंग ऋषि जो है वो राह देख रहे हैं, आप उनके पास जाइए, यहां से 10 मील का अंतर है, आप चल के जाइए और शरभंग ऋषि आपको मिलेंगे। तो शरभंग ऋषि जो है वो बड़े सिद्ध विद्वान थे, आप लिखिए, जिसको नींद आ रही है वो लिखना आरंभ कीजिए। तो शरभंग ऋषि तपस्या करते हैं और अपनी तपस्या इतनी परम भक्ति के स्तर पर करते हैं कि सत्व रज और तमोगुण के परे हो जाते हैं, और वहां जाकर जब ही दिव्य गुण में स्थित होते हैं तो अपने हृदय में प्रभु रामचंद्र का दर्शन करते हैं। और तब तक उनकी तपस्या के वजह से पुण्य कर्म इतने हो जाते हैं कि स्वयं इंद्र जो है वो अपने देवताओं को लेकर, पत्नियों को लेकर, विमान में लेकर वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आप स्वर्ग में आने के योग्य, आप स्वर्ग में चलिए। लेकिन जैसे प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन हृदय में करते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है, मुझे विश्वास है कि रामचंद्र जी आएंगे, मुझे दर्शन देंगे, इसलिए मैं स्वर्ग में नहीं आया। इसलिए वो इंद्र जी को टाल देते हैं, वापस भेज देते हैं। आप सोच सकते हैं आपको निमंत्रण आ रहा है और स्वयं स्वर्ग के राजा देवेंद्र आपके पास विमान लेकर आए हैं अपने पूरे पंटन के साथ में और आपको इन्वाइट कर रहे हैं, चलिए आइए। आप बोलेंगे नो सर सॉरी, मतलब अभी आता हूँ तुरंत, सब कुछ छोड़ के इमीजिएटली। लेकिन शरभंग विरक्त मुनि थे, मना कर देते हैं। और जब रामचंद्र उनके कुटी पे चल रहे हैं तो आकाश में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आकाश में, विमान में बैठे हुए सब देवताओं का दर्शन करते हैं, उसका प्रकाश सब जगह फैला हुआ है, उनकी पत्नियां विविध अलंकार पहने हुए, सीता देवी देख रहे हैं, लक्ष्मण देख रहे हैं और रामचंद्र भी देख रहे हैं। और कुछ देर बाद में वो अदृश्य हो जाते हैं, चले जाते हैं अपने लोक पर। फिर शरभंग ऋषि के आश्रम में जैसे पहुंचते हैं तो आंखों में आंसू लेकर उनका स्वागत करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, अपने पास जो दरबासन है उसको बिठाते हैं, फल फूल कंदमूल खिलाते हैं और वर्णन करते हैं कि मैंने आपके हृदय में दर्शन किए थे, मुझे विश्वास था और मैं आपको भी प्रार्थना करता हूं कि मैंने जितने पुण्य कर्म किए हैं उनको सब नष्ट कर दीजिए आप, क्यों उस पुण्य फल के स्वरूप मुझे स्वर्ग में जाना पड़ेगा और सब भोग ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि जो बुरे कर्म होते हैं उनका फल भी अनिवार्य है और जो अच्छे कर्म होते हैं उनका फल भी अनिवार्य है, दोनों को डाल नहीं सकते हैं। इसलिए भक्त के लिए पुण्य और पाप दोनों ही खराब है, पाप तो खराब है ही तो नरक में लेके जाएगा, लेकिन पुण्य भी स्वर्ग में लेके जाएगा और भोगवाद में हम लिप्त हो जाएंगे। इसलिए संत लोग पुण्य भी इकट्ठा नहीं करते, फिर करते क्या है, वो केवल भगवान की सेवा करके आध्यात्मिक जो धन धन दौलत है उसको इकट्ठा करते, स्पिरिचुअल वेल्थ जो पुण्य और फल के विभागणी में नहीं आता है, तो भगवान उसके उनकी इच्छा से उसका पुण्य फल नष्ट कर देते हैं और उनके कहते हैं कि आप हमारे लिए क्या संदेश देना चाहते हो। तो शरभंगा ऋषि कहते हैं कि यहां से 20 मील सुतीक्ष्ण ऋषि का आश्रम है, सुतीक्ष्ण वो आपको आगे का मार्ग बताएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो फिर वहां पर निकलने के पहले शरभंगा ऋषि जो है बैठ जाते हैं ध्यान में और अपने आत्मा के हृदय के अंदर से अग्नि उत्पन्न करके अपने शरीर को भस्म कर देते हैं और भगवान रामचंद्र की आंखों के सामने दिव्य शरीर जो आध्यात्मिक जगत में होता है वो शरीर धारण करके वो भगवान के आंखों के सामने वैकुंठ आगमन करते हैं और उनको विदा करके फिर राम लक्ष्मण भगवान दंडकारण्य में आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ, और बताए कथा, सबको सुनने की इच्छा है ना? हरे कृष्ण। तो आगे चलते हैं, दंडक वन में यात्रा करते करते फिर वो सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही तुरंत वो दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आपको हमें अगस्त्य मुनि के आश्रम में ले जाना है। ये जो अगस्त्य मुनि का आश्रम है सब ये दंडकारण्य है। तो जब ये आगे आगे चलते हैं तो 10-20 मील चलने के पश्चात अगस्त्य मुनि का आश्रम आता है। तो आश्रम आने के पहले ही अचानक सब घना जंगल नष्ट हो जाता है और हरियाली और अच्छे बड़े बड़े पेड़ के फल के पेड़ और बाघ और हिरण सब साथ में विचर रहे हैं, जो शत्रु हैं एक दूसरे के, सभी प्राणी जो है साथ में विचरण कर रहे हैं, पक्षी बहुत सुंदर सुंदर आवाज कर रहे हैं, सब जगह पर आनंद है, शांति है, कोई वैर नहीं है। तो रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि हम अगस्त्य मुनि के आश्रम के पास में आए हैं, अगस्त्य मुनि के तपस्या भक्ति और भजन के प्रभाव से सारा परिसर जो है, मीलों परिसर जो दूर तक परिसर है वो दिव्य गुण में आ गया है। वहां पर कोई प्राणियों में कोई शत्रुत्व नहीं है, कोई वैर नहीं है, सब आनंद प्रेम समभाव हारमोनी सब छाया हुआ है। फिर वो प्रवेश करते हैं अगस्त्य मुनि के आश्रम में, तो क्या देखते हैं कि अगस्त्य मुनि एक ही साथ में अनेक यज्ञ कुंडों में यज्ञ कर रहे हैं, अलग अलग देवताओं के लिए एक यज्ञ कुंड बनाया है, उनके सारे शिष्य एक एक कुंड के अधिपति हैं और वो बीच में बैठकर सभी कुंडों का नियंत्रण कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। बड़े तेजपुंज नजर आते हैं अगस्त्य मुनि। कल हमने आपको उनकी कथा बताई थी, कितने महान थे वो, सागर को पी लिया था उन्होंने। तो जैसे रामचंद्र जी आते हैं वो अग्नि में समिधा अर्पण करते हैं और रामचंद्र जी के पास आते ही रामचंद्र उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, जैसे सीनियर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड दंडवत प्रणाम करते हैं। राम लक्ष्मण और सीता जी बड़े सविनय अपने शीश को झुकाते वहां खड़े रहते हैं। तो रामचंद्र को गले लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बिठाते हैं, उनको फल फूल खिलाते हैं और तुरंत ही वापस ध्यान में बैठते हैं। और उनके ध्यान में बैठने के बाद कुछ देर पश्चात वहां एक बहुत भव्य और दिव्य तेजायमान धनुष प्रकट होता है और उसके साथ साथ में एक तलवार प्रकट होती है, बहुत लंबी और कवर में डाली हुई, और दो तोड़ीर बाणों से भरे हुए प्रकट होते हैं, जिसको देखते ही ऐसे आंखें चौंधे जाती है, इतना प्रकाश उसमें उत्पन्न होता है। अगस्त्य जी कहते हैं कि देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु ने इस धनुष को इस्तेमाल किया था, जो आप उनकी इच्छा से मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, और ये इनके तोड़ीर है दो बाण, इसमें दिव्य अस्त्र मैंने रखे हैं जो उनके ही हैं, हर प्रकार के दिव्यास्त्र जो आपको आगे जरूरत पड़ेंगे इसमें विराजमान है, और ये तलवार है भगवान विष्णु की। तो बड़े आदर से वो स्वीकार करते हैं और शीश पे लगाते हैं। तो ये विष्णु धनुष है, जो उन्हें तोड़ा था वो धनुष कौन सा था? वो शिव धनुष था, ऐसा है। तो ये धनुष लेकर, ऐसा नहीं कि हर समय उनको वो तोड़ने का धनुष कैरी करना पड़ता है, जब याद करेंगे तो वो प्रकट हो जाता है, जब नहीं चाहिए तो वो अदृश्य रहता है। ऐसे इनकी स्थिति, ऐसा नहीं कि सब कुछ लाद के चल रहे हैं, धनुष बाण हाथ में रखते हैं अपना, लेकिन जो दिव्यास्त्र है वो सब वो अदृश्य रहते हैं, जब मंत्र बोलेंगे तो प्रकट हो जाते हैं। ऐसे करते करते फिर वो अगस्त्य जी पूछते हैं कि हमको भी कहाँ जाना चाहिए, हमारे लिए बेस्ट स्थान कौन सा है। तो अगस्त्य जी कहते हैं कि यहीं आगे कुछ देर बाद गोदावरी का दर्शन होगा आपको, इसी जगह पर ब्रह्मगिरी से गोदावरी का आगमन हुआ है। आपने बताया था आपको कल कि सत्ययुग में 2 लक्ष होने के पश्चात, 2 लक्ष साल होने के पश्चात मंधाता राजा के आधिपत्य में राजा जी का उद्गम गोदावरी का हुआ था, तो वही गंगा जी गोदावरी बह रही है, सत्ययुग द्वापर त्रेतायुग द्वापर तक बह रही है, फिर कलयुग तक बह रही है। तो त्रेता में उनको बताते हैं कि आगे दर्शन आपको होगा, तो आप वहीं पर अपनी कुटी बनाइए और वहां पर आश्रम आराम कीजिए। वहां पर एक सुंदर स्थान है, इसका नाम पंचवटी है, उसी के पास में आप कुटी बनाकर वहां पर विश्राम कर लेना। तो फिर उनके आदेश के अनुसार वो चलते हैं और वहां पर गोदावरी किनारे आते हैं और लक्ष्मण जी को बताते हैं कि राम बताते हैं कि अभी आप योग्य जगह देखकर कुटी बना लेना। लक्ष्मण जी के स्थान में हम लोग बैठे हैं। तो लक्ष्मण जी का गौरव ऐसा है कि उनके पिता ने उनको कहा था निकलते समय कि आपका ये उत्तरदायित्व तो रहेगा राम और सीता की रक्षा करने का, उनका क्षेम कुशल, उनका भोजन, उनका शयन, ये सब आपके जिम्मे है और जब वो विश्राम करेंगे तो आपको जगना है, और जो जग रहे हैं तभी भी जगना है, क्योंकि तो जग रहे स्वामी तो कैसे सो सकता है नौकर, और जब वो सो जाएंगे तो जगना है, क्योंकि जंगल में हिंस पशु होंगे, श्वापद होंगे, राक्षस होंगे, उनसे आपका उनके निगरानी करना है। वो भी खड़े खड़े नहीं, विरासन में बैठकर, रेडी टू फाइट। आपने किसी ने विरासन किया है कभी? एनीबडी हैज़ डन विरासन? वो ऐसा आसन है उसमें आदमी कभी सो नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल टू स्लीप। इसलिए सब लोग जो है वीर लोग जो होते हैं ना, जो क्या कहते हैं इसको, दे आर विजिलेंस, सो दे आर ऑन दिस आसन। अभी तो कोई आसन नहीं होता है, सब जूता पहनकर पैंट पहनकर AK-47 लेके घूमते रहते हैं। दिस इज द विजिल ऑफ करंट एज। तो उस समय दिव्य आसनों को लेकर लक्ष्मण जी 14 साल तक कभी सोए नहीं। कितनी बड़ी विभूति है, 14 साल तक दिन भर सेवा करते रहे और रात भर जगते रहे, और ऐसे कई राक्षस रात को आए और राम जी को बिना जगाए उन्होंने कई राक्षसों का वध कर दिया है। राक्षसों का, जानवरों का, जो 20 जंगल के श्वापद है, सिंह है, शेर है, उनको बिना डिस्टर्ब किए उन्होंने वहीं से खत्म कर दिया। राम जी की नींद डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो जब वो लौट के गए अयोध्या और राज्याभिषेक राम जी का फिर दोबारा हुआ, रामचंद्र जी भगवान राजा बने अयोध्या के, तो जब सबसे पहले सभा हुई तो सब लोग अटेंशन में थे ना, सब सेनापति मंत्रीगण सब अटेंशन में खड़े थे और लक्ष्मण जी जमाई दे रहे थे जोरदार। सब कहते हैं अरे कैसे है ये, भगवान राजा रामचंद्र के भाई हैं, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और इतनी बड़ी सभा में जमाई दे रहे हैं। तो वशिष्ठ उनको समझाते हैं कि 14 साल तक उन्होंने निद्रा नहीं ली है, अभी रामचंद्र जी को सुरक्षित अवस्था में देखकर वो निश्चिंत हो गए, इज रिलैक्स्ड। तो उनको सबसे पहली बार 14 साल के बाद में नींद आ रही है। तो उनका जमाई जो है उनका बुरा शिष्टाचार नहीं है, इट्स नॉट अ बैड एटिकेट, इट इज साइन ऑफ हिज ग्लोरी एंड ही हैज नॉट स्लेप्ट फॉर 14 इयर्स, ही इज जस्ट नाउ अबाउट टू स्लीप, इज फीलिंग वेरी स्लीपी। तो लक्ष्मण जी का ऐसा सेवा भाव था, उन्होंने कभी भी सीता जी के चरणों के ऊपर नहीं देखा उनको कभी। इसलिए जब उनको खोजने का प्रयास कर रहा था, कर खोज हो रहा था, तो वो कहते मैंने कभी उनको देखा ही नहीं, केवल उनके वो जो आभूषण गिरे हुए थे ना, उसमें कुछ गले के थे, कुछ बिंदी थे, हाँ कुछ हाथ के थे, कुछ बाजू के थे। तो वो कहते मैं केवल पायल को पहचानता हूँ, तो मैंने केवल उनके पायल के दर्शन किए, कभी ऊपर उठा के नजर देखी नहीं उनको मैंने। तो बाकी के अलंकार को वो उन्होंने पहचाना नहीं, और राम जी पहचान रहे थे लेकिन वो दुखी थे बहुत। तो पूछते आप जैसे कि आप दुखी हो, टेंशन में हो, एंग्जाइटी में हो, तो आप पूछते ना कि ये रास्ता है ना, सही रास्ता है ना, आपको पता है वो रास्ता, लेकिन पूछते हैं कि ये रास्ता है ना, यही टर्न है ना, मतलब यू आर इन इमोशनल कंडीशन, यू आर कंफर्मिंग। तो पहचान रहे उनके अलंकार को, लेकिन फिर भी पूछ रहे लक्ष्मण जी ये सीता जी का गले का हार तो नहीं है, ये उनके माथे की बिंदी तो नहीं है, ये उनके कंगन तो नहीं है। तब वो जवाब देते हैं कि मैं इनको जानता नहीं हूँ, मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन जब पायल आती है तो कहते कि यहाँ ये माता सीता के पायल है। ऐसे लक्ष्मण जी का सेवा भाव है, पूर्णता समर्पित। हाँ, वो भगवान शेष के अवतार है, बलराम जी जो है वो भगवान कृष्ण के सबसे पहले अवतार है, फर्स्ट एक्सपांशन लीला अवतार बलराम जी है, और उसके बाद में बलराम जी विस्तारित होते हैं चतुर्व्यूह में, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, और इस संकर्षण से और एक संकर्षण का उत्पन्न निर्माण होता है, उसके बाद नारायण निर्माण होते हैं संकर्षण से, और नारायण से द्वारा महाविष्णु का निर्माण होता है जो कारण सागर में शयन करते हैं, उनके द्वारा गर्भोदय दक्षायु विष्णु का निर्माण होता है, और उसके बाद में परमात्मा रूप निर्माण होता है भगवान का। तो मेरा ऐसा विचार है कि अभी हम यहां से चल के तपोवन में जाएंगे और वहां कथा करेंगे। सबका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ वहां, तो यहाँ हमारी कथा हम समाप्त करके थोड़ा चल के आगे जाएंगे गोदावरी के पास में, वहां कथा करेंगे। हरे कृष्ण।